श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ तृतीय स्कंध 29वां अध्याय श्लोक संख्या 30। रूप भेद विदस्तत्र ततश्चोभयतोदतः तेषां बहुपदाः श्रेष्ठा चतुष्पादस्ततो दीपात् रूप भेद विदस्तत्र ततश्चोभयतो दतः तेषां बहुपदाः श्रेष्ठा चतुष्पादस्ततो दीपात् रूप भेद विदस्तत्र ततश्चोभयतो दतः तेषां बहुपदाः श्रेष्ठा चतुष्पादस्ततो दीपात्। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। अनुवाद: ध्वनि सुन सकने वाले प्राणियों की अपेक्षा वे श्रेष्ठ हैं जो एक रूप तथा दूसरे रूप में अंतर जान लेते हैं। इनसे भी अच्छे हुए हैं जिनके ऊपरी तथा निचली दांत होते हैं, और इनसे भी श्रेष्ठ अनेक पांव वाले जीव होते हैं, और इनसे भी श्रेष्ठ चौपाए होते हैं, और चौपाए से भी बढ़कर द्विपाद मनुष्य होते हैं। तात्पर्य: कहा जाता है कि कौवे जैसे कुछ पक्षी एक दूसरे रूप से अंतर कर सकते हैं, बर्रे जैसे जीव जिनके पैर हाथ पैर होते हैं वे बिना पैर वाले वृक्षों तथा वनस्पतियों से श्रेष्ठ हैं, चार पैर वाले पशु अनेक पैर वाले जीवों से श्रेष्ठ है, पशुओं से भी मनुष्य श्रेष्ठ है क्योंकि उसके केवल दो पैर होते हैं। ओम अज्ञानंतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरोन्वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितं च। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप इस श्लोक श्रृंखला में भगवान कपिल जो कहते हैं कि एक जीव से दूसरे जीव, पूर्व पूर्व वर्णित जीव से पर पर वर्णित जीव का श्रेष्ठत्व बताते हैं, तो आज के श्लोक से वो बताते हैं, जैसे काल स्पर्श भेदी के बाद बताया गया था, तो आज बताते हैं रूप भेदवित। जो रूप भेद करते हैं, कल शब्द भेद तक कहा गया था, जो शब्द को जान करके प्राणी को पहचान लेते हैं सांप आदि, तो उनसे जो रूप के भेद कर पाते हैं वो उनसे श्रेष्ठ है। उनसे बढ़कर वो हैं जो जिनका मुख में दो तरफ से दांत होता है, उभय तो दंत, और उनसे भी बढ़कर वो होते हैं जिनका अनेक पैर होता है, और उनसे भी बढ़कर वो होते हैं जिनका केवल चार पैर होता है पशु आदि, और उनसे भी बढ़कर वो होते हैं जिनका दो पैर होता है। और अभी आगे चल करके और भी बताएंगे बढ़ करके। पूरा ये 6.5 श्लोक में कपिल भगवान ने प्राणियों का श्रेष्ठता शिखर पर्यंत वर्णन किए हैं, वर्णन करके अंत में कहते हैं वो सबसे श्रेष्ठ वो है जो भगवान को जानता है, भगवान को जान करके मान करके उनके अनुरूप कर्म करता है, उनके लिए ही कर्म होता है, वही सर्वश्रेष्ठ है, उसी को मानते हैं। और जैसे मुझे भी धर्मात्मा प्रभु ने बताए थे कि अब पुरुषोत्तम अधिक मास के बारे में थोड़ा बताने के लिए, तो इसी श्लोक में जो श्रेष्ठता वर्णन करते चला गया क्रम अनुसार में, प्रत्येक निर्जीव वस्तु से लेकर के सजीव, सजीव से उत्कृष्ट उत्कृष्ट तरह उत्कर्ष स्थिति में, भगवत भक्त को सबसे उत्कृष्ट उत्कर्षतम स्थिति में रखा गया है, तो इस प्रकार इस संपूर्ण ब्रह्मांड में तीन तत्व हम देखते हैं, एक तो ये संसार, फिर जीव, और ये दोनों को चलाने वाला है ईश्वर, मुख्यतः ये तीन वस्तु हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ जो हैं, जो दोनों को नियंत्रण करने वाले हैं, वो ईश्वर हैं, और उन ईश्वर को जानना ही सर्वश्रेष्ठता है, और ईश्वर स्वयं ही सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को भगवान स्वयं बताते हैं, क्योंकि स्वयं ही उत्तम है, पुरुषों में उत्तम है बताते हैं। ठीक इसी प्रकार कभी कभी जगह पर कोई देश प्रधान होता है, कहीं काल प्रधान होता है, कहीं वस्तु अपात्र प्रधान होता है, किस किस काम को संपादन करने के लिए। विशेष करके इस क्षेत्र में वृंदावन धाम, ये तो क्षेत्र सबसे प्रधान है ही है, श्रेष्ठ है ही है, तो उनमें से काल भी श्रेष्ठ है। वर्तमान जो काल चल रहा है पुरुषोत्तम मास, वो काल भी श्रेष्ठ है, और इसमें से जो पात्रता अपने को श्रेष्ठ बना देगा तो फिर उनका काम बनी जाएगा। तो ये जो पुरुषोत्तम अधिक मास है, आप जानते हैं कि प्रति 3 साल के बाद एक अधिक मास आता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम ये पृथ्वी लोक में जो समय गणना करते हैं, मास वर्ष आदि गणना करते हैं कालदंड से लेकर के, वो सौर वर्ष या चंद्र वर्ष, सूर्य के द्वारा गणना करते हैं या चंद्र का द्वारा, मेरु पर्वत को सूर्य भी परिक्रमा करते हैं, चंद्र भी परिक्रमा करते, सारे ग्रह नक्षत्र करते हैं मेरु को, तो उन्हीं के ये परिक्रमण समय को लेकर के हमारा समय निर्णय किया जाता है, काल निर्णय होता है। उसमें से हम जो साधारण वर्ष मानते हैं 365 दिन का, वो सौर वर्ष है सूर्य गणना के अनुसार, जो एक संक्रांति से दूसरे संक्रांति अमावस्या, अमावस्या से सूर्य चलते हैं, अमावस्या और संक्रांति के अनुसार मास के अंत होता है संक्रांति में, मासांत से संक्रांति तब फिर शुरुआत होता है, लेकिन चंद्र कला के अनुसार पूर्णिमा के अनुसार मास पूरा होता है। लेकिन पूरे साल में 12 राशि होते हैं जिसमें चंद्र भी स्थित होते हैं, सूर्य भी स्थित होते हैं, एक राशि से दूसरी राशि को संक्रमण करने से एक मास पूरा होता है, संक्रांति कहते हैं, सूर्य का संक्रमण होता है। लेकिन सूर्य के कई लाख योजन ऊपर में चंद्र अवस्थित हैं, इसी कारण से उनके गति और उनके गति में बहुत अंतर है, तो इसलिए चंद्र कला के अनुसार जो वर्ष के गणना के अनुसार जो पूरा वर्ष पूरा हो जाता है लगभग 354 दिन में, और सूर्य गणना के अनुसार वर्ष पूरा हो जाता है 364 दिन, कुछ थोड़ा ज्यादा 365 दिन के आसपास, तो बीच में जो गैप 10 दिन 11 दिन रह जाता है उसमें ना चंद्र ना सूर्य किसी का प्रभाव रहता है, वो फल्स देश रहता है। तो इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष ये 10-10 दिन एक्स्ट्रा निकलता है, ये दोनों काल की गणना में, तो तीन साल में एक महीना के बराबर हो जाते हैं। तो एक महीना जो अधिक समय है, जिसमें ना कोई तिथि है, ना राशि है, ना संक्रांति संक्रमण है, कुछ नहीं है, तो उसको बोलते हैं ये तो गार्बेज है, मल है, ये इस वर्ष से निकल पड़ा, वर्ष चलते चलते उसमें कोई तिथि नहीं, कोई उनका अधिदेव नहीं, कोई उसका राशि नहीं, कोई सूर्य का संक्रमण नहीं, चंद्र का पूर्णिमा, तो इसलिए इस शुभ कार्य के लायक नहीं है। तो ब्रह्मा के सृष्टि में जब पहली बार इस प्रकार तीन साल में एक अधिक समय अधिक मास बना, तो बाकी जितने मास हैं सभी मास का अधिदेवता होते हैं, तो सभी ने उसको अलग किए, बोले ना तेरा कोई अधिदेव नहीं, कोई पति नहीं है, तू अलग, तो तुझे गिनती नहीं कर जाए, तू मल है। तो उसको हीन दृष्टि में देखे, और उसमें कोई शुभ कार्य करने के लिए मना किया गया है, तो इसी में लज्जित होकर के वो अधिक मास और अपने पति की ढूंढते हुए, अपने अधिदेव को प्राप्त करते हुए, अपने दुर्गति को सुधार करने के लिए उन्होंने बहुत शोकग्रस्त होकर के ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा जी ने अपने बस विष्णु के पास ले गए उनको। विष्णु ने उनके पूरे जो निवेदन है उसको सुने। सुनने के बाद उन्होंने बोले मैं भी क्या कर सकता हूं, मुझे तो कुछ उपाय दिखता नहीं। विष्णु के मुख से इस प्रकार वाक्य सुन करके वो अधिक मास खूब दुखित होकर के फेंट हो गए, सेंसलेस हो गए उनके सामने। तो भगवान विष्णु ने बड़ी कृपा करके गरुड़ जी के द्वारा उनको सचेत करा करके उनको ले करके उनके ऊपर अधिकारी गोलकाधिपति भगवान कृष्ण के पास ले गए। तो वहां पर सारे विधिवत बताया गया, अधिक मास ने बताया, भगवान विष्णु स्वयं बताया, उनके ओर से वकीलाती किए। तो भगवान कृष्ण इसे सुनने के बाद बोले कि विष्णु जब आपने खुद ले आए उनको, तो फिर कहने का क्या है, उसको तो अनादर, मेरे धाम में जो आते हैं तो वापस जाते ही नहीं, तो आप उनको स्वयं लेकर आए ब्रह्मा विष्णु समेत, तो फिर वो कैसे जाएगा। तो ठीक है, उसको कोई अधिपति नहीं है तो मैं उनका अधिपति बनूंगा, तो उनका कोई नाम नहीं है, वो मेरा नाम ही रहेगा, तो उनका मेरा ही गुण उसमें रहेगा। तो भगवान जो सर्वसमर्थ है, सर्वगुणी से गुणी है, तो उन्होंने अपने गुण, अपने नाम और अपने स्वयं संरक्षक इस मास का बने, अधिपति बने। तो इसी कारण से बाकी जितने मास था पुण्य से पुण्यतम और सबसे पूज्य वो बन गया, और जितने लोग थे, जितने मास थे, देवता सब कुछ उनको पूज्य माने, क्योंकि साक्षात भगवान उनके संरक्षक बने, इसलिए उसका सर्व उत्कर्षता प्रतिपाद्य हो गया, सर्वश्रेष्ठ, सर्व से सबसे उत्कर्ष माना गया। और इसी को वास्तविक मलमास नहीं कहते हैं, वास्तविक उसका नाम है अमलमास। मल तो वो होता है जो गंदगी है, कचड़ा है, उसको मल कहते हैं। जो हम साधारण पुण्य मास में, पुण्य समय में जो पाप पुण्य आदि क्रिया करते हैं, तथा कथित पाप नहीं करके जो शुद्धि जन है, पुण्य कर्म करते हैं, शुभ कर्म आदि करते हैं, तो उसी में भी बंधन लगता है, स्वर्ग आदि सुख प्राप्त होते हैं, और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकंग विसंति, पुण्य खत्म होने के बाद फिर वापस वहीं आ जाएंगे, तो ये भी तो बंधन है। चाहे सोने के चेन में बांधा जाए, या लोहे के चेन में, या साधारण रस्सी में, बंधन तो बंधन ही है। तो ये बंधन जिसके द्वारा हम पुनराय इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से ग्रस्त होते हैं, तो उसको हम अमल कैसे कहेंगे, वो तो मल है ही, वही तो हमारा दोष है, वही दोष ग्रस्त है। लेकिन ये पूरी मास में से ये जो अधिक मास है, तीन साल के बाद आता है, वो वास्तविक अमल है, क्योंकि ये बंधन उसमें नहीं है, क्योंकि उसमें ना पुण्य कर्म आप कर नहीं सकते, किसी प्रकार के शुभ कर्म कर ही नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, न कर्म नहीं कर सकते, केवल अकर्म कर सकते हैं, केवल भगवत कर्म कर सकते हैं। वो महीना केवल शुद्ध भक्ति के लिए ही रखा गया है, बाकी किसी प्रकार के पुण्य कर्म, स्वर्ग आदि के लिए ये प्राप्त करो कुछ नहीं, निष्काम रूप से केवल भगवत प्रसन्नता के लिए भगवत भक्ति करने के लिए ही काल को निकाल निकाल करके 3 साल में अलग कर दिया गया। तो वास्तविक अमल मास है, अमल मास नहीं, उसमें भक्ति अमल है, बिल्कुल निष्कलंक है। तो ये इस अधिमास में केवल शुद्ध भक्ति की आचरण किया जा सकता है, इसलिए वास्तविक अमल मास है। बाकी जितने सब अमल हो सकते हैं ये अमल है, अमलों में ये अमल निकला है 3 साल में, थोड़े से बचते बचते अभी अमल मास निकला। तो इसी में अधिपति स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के प्रति भक्ति याजन किया जा सकता है। यही सबसे परम शोभन काल है। इसी काल में अगर शुभ क्षेत्र में रह करके शुभ पात्रता को प्राप्त किया जाए और शुभ क्रिया किया जाए, शुभ माने भक्ति उन्मुखी क्रिया, उसको शुभ कहते हैं। ये तथा कथित स्वर्ग प्राप्ति आदि, कुछ सुख प्राप्ति आदि, ये सुख नहीं है, वो तो बंधनकारी है। यहां मैं शुभ कहता हूं वो भक्ति उन्मुखी कृति क्रिया, उसको कहते हैं। तो इस भक्ति उन्मुखी क्रिया को अगर कोई पात्र बनकर के उसको करे, और इस विशेष काल में विशेष देश में अगर करे, तो उसका जो सफलता है, उसका जो प्राप्ति है, वो साक्षात पुरुषोत्तम धाम को प्राप्त कर सकता है, साक्षात भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। इसलिए पुरुषोत्तम अधिक मास महिमा में अनेक अनेक ऐसे कथा का वर्णन है, जिसमें से यही सार बताया गया है कि इस समय में अगर कोई व्यक्ति, कोई प्राणी, जाने में हो अनजाने में हो, किसी भी प्रकार से अगर कुछ भजन पूजन भक्ति किया, तो उसका अशेष फल प्राप्त होता है, अशेष फल प्राप्त होता है, और अंत में भगवत प्राप्त पद प्राप्त कर लेता है। वो जो इस काल को जाने अनजाने में अवमानना करता है, तो उनका तो महादुर्गति होता है, क्योंकि ये साक्षात भगवत अवमानना हो जाएगा, क्योंकि ये मास के अधिपति स्वयं भगवान है, इसमें ना कोई पुण्य पाप कुछ नहीं है, साक्षात भगवान भक्ति है इसमें विराजमान। तो इसलिए उसको अवमानना किंचित नहीं करना चाहिए, बड़ी सम्मान और सतर्कता के साथ उसको पालन करना चाहिए। ये इस मास का विशेषता है। और चूंकि भगवान स्वयं पुरुषोत्तम है, और पुरुष उत्तम, पुरुष कहने का मात्र से हम ये समझते हैं कि ना तो कोई ये स्त्री है ना क्लीब है, ये दोनों से परे पुरुष मात्र है, और पुरुष में उत्तम पुरुष है, सबसे श्रेष्ठ है, तो वो केवल भगवान स्वयं है। तो भगवान स्वयं अपने बारे में जब प्रवचन करते हैं भगवद गीता में, तो उसमें एक अध्याय पुरुष उत्तम जो करके बताते हैं। इस अध्याय में भगवान ने विशेष करके इस संसार को वर्णन किए, एक वृक्ष के रूपक दे करके वृक्ष जैसा वर्णन किए। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं एक ऐसा वृक्ष है जिसका जड़ तो ऊपर है, बाकी शाखे प्रशाखा उसका नीचे की तरफ है, और सब वेद छंद आदि है सब उसके पत्ते हैं, ऐसा वृक्ष है। और बोलते हैं कि इस वृक्ष को जो जानता है इस प्रकार वही वेदविद है। तो आचार्य लोग कहते हैं केवल इस पेड़ को जान लेना यही काफी नहीं, वो वेदविद नहीं होता है। वास्तविक वेदविद वो होता है कि क्या, कि वृक्ष के रूप क्यों दिए भगवान ने, कि वृक्ष को ही छेदन किया जा सकता है, बाकी किसी को काट नहीं सकते, काटने के लायक केवल पेड़ ही होता है। तो ये संसार वृक्ष है कि संसार काटने लायक है, संसार छेदन करने के लायक है, उसको छेदन किया जा सकता है। ऐसा छेदन करने का लायक और छेदन का उपाय को जो जानता है वही वेदविद है, इस संसार वृक्ष को जानता है, ये उसका मर्म है, वो वेदविद। और कैसे काटा जा सकता है उसको दूसरे फेज में बताए 3-4 श्लोक में। जो कुठार से इस वृक्ष को काटा जा सकता है वो साधारण लोहे की इसके धातु वाला नहीं, वो वैराग्य रूपी कुठार, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, दृढ़ भाव से असंग रूपी अस्त्र से, वैराग्य रूपी अस्त्र से इस संसार रूपी वृक्ष को छेदन किया जा सकता है। छेदन करके कहां जाएंगे, न निर्माण मोहा जित संग दोषा, वही अव्यय पद को भगवत पद को प्राप्त किया जा सकता है। ये व्यय पद है, इसको छोड़ करके उसको मिटा करके उस अव्यय पद को प्राप्त करना, ये भी भगवान बताए। और उसके ऊपर जोर देकर बोले कि आप समस्त हम सभी जो जीव हैं, ये भगवान बोलते ममे वांशु जीव लोग, ये सब मेरा अंश है। भगवान मेरा अंश कहने के आशा ये है, कहते हैं कि आप मेरा है और कोई दूसरा चीज मिश्रित नहीं है आप में। जैसे एक गिलास पानी है तो ये जल गई है उसमें, उसमें दूसरा चीज मिलावटी कुछ नहीं है। तो भगवान बोलते तू जीव मेरा अंश है, तो जीव में मेरा ही अंश है और कोई दूसरा कोई मिश्रण नहीं है, मैं ही जीव रूप में हूं, जीव मेरे है और मेरे ही जीव है, इस प्रकार जानना। अंश है भगवान के, भगवान अंश ही है, उन्हीं के अंश है। और जीव भूत अवस्था में आकर के बहुत कष्ट करता है इंद्रियों के साथ कर्षण करके, मनसष्ठानी इंद्रियाणी स्थानी कर्षति, वो न जान कर करता है, तो इसलिए भगवान अपना प्रभाव जनाते हैं। भगवान का विशेष जो अप्रतिम प्रभाव है, जद आदित्यगत तेजम जगत भासयत अखिलम, जद चंद्रमसि जच्चाग्नो तत् तेजो विधिमामकम, कि संपूर्ण जगत को जो आलोक प्राप्त करवाता है, जो तेज प्राप्त होता है, जो सूर्य है वो चंद्रम है, वो मेरी ही तेज से होता है। जद चंद्रमसि जद सूर्य, चंद्रमा शशि ये सब मेरा ही। गामा विश्यच भूतानि धारयामि अहम ओजसा, इस सारे संसार भर में ब्रह्मांड में जो समस्त जीव समस्त भूत प्राणी लेकर जो रहते हैं, उनको कौन रखवाता है, कौन उनको तैराते, संसार कैसे टिक सकता है, उनका टिका हुआ के पीछे कारण मैं हूं। गाम आविश्यच भूतानि धारयामि अहम ओजसा, मेरा ओज से मेरा शक्ति से ब्रह्मांड तैरता है चलता है, सारे जीव इसमें रहते हैं जो काम करते हैं। ये भगवान का अप्रतिम प्रभाव है। इतने में नहीं और आगे चलकर कहते हैं क्या, उष्णामी च औषधि सर्वासम भूतार सात्मक, और बाकी जो खाते पीते बचते हैं डेली विटामिन प्रोटीन ये सब, बोलते ये भी मेरे ही जितने सारे औषधि हैं, जो वो खाते हैं खाने के द्रव्य, उनके अंदर जो रस है, जो औषधि है, जो प्रोटीन विटामिन सब, ये सब उष्णामी मैं ही पोषण करता हूं, पालन वाले रखने वाले मैं ही हूं। च औषधि सर्वा सो भूतार सा, एक फीट कर दिया सो मुई इससे मैं ही करवाता हूं सारे, आप नहीं समझते हैं उसको, बैकग्राउंड में मेरा ही मैं ही रहता हूं। और केवल इतना नहीं, जो खाते हैं खाने के बाद में पचाने का भी काम है। आजकल तो सबसे बड़ा पेट के हमारे इंडाइजेशन हो जाता है, भगवान बोलते हैं कि मेरे से कमी है गया, आप मुझे नहीं जानते ठीक से। अहं वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः, मैं वैश्वानर अग्नि बन करके सबके अंदर बैठ करके जो खाते हुए चीज को पचाता हूं। तो ऊपर से लेकर नीचे तक केवल भगवान ही है, ये ब्रह्मांड को धारण करते हैं, जीव लोग अपने अंश के रूप में जीव की सृष्टि करते हैं, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, आलोक वायु सब कुछ देते हैं, खाना पचाते भी हैं, सब कुछ करके भी रखवाते हैं। प्राण पान समाजुक्तम पचामी अन्न चतुर्विधम, प्राणापान पंच वायु को भी मेरे द्वारा ही प्रचारित होते हैं। केवल इतना नहीं, यहां तक 15 नंबर श्लोक, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, बोलते हैं ऐसा नहीं कि मैं कहीं दूर में हूं, नहीं आप में ही हूं, अभी हूं, ऐसा नहीं कि बाद में कभी अब मिलेंगे देखेंगे, नहीं नहीं अभी वर्तमान हूं, मेरे से कभी बिछुड़ा हुआ था नहीं तूने, ना कभी छुड़ सकता है। भगवान से जीव कभी अलग हो ही नहीं सकता, ना कभी अलग था ना हुआ है ना होगा, हो ही नहीं सकता। और कैसे, थोड़ा पास में बैठे कि नहीं, पास में क्या, आपके हृदय में ही बैठा हूं, आपके अंदर, तुम्हारा हाथ पैर तो फिर भी दूर से दूर है तेरे से, मैं और नजदीक बैठा हूं, हृदय सन्निविष्ट वहीं सन्निविष्ट होकर बैठा हूं। करते क्या है, नमक्त स्मृतिर अपोहनम, जो भी कुछ करता है यादास्त माने याद करना और भूल जाना, ये सारे कंट्रोल मैं ही करवाता हूं। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, और जो आप पढ़ते हैं वेद शास्त्र दि वेदेश सर्वे अहम एव विद्यो, संपूर्ण वेद वाङ्मय में केवल जानने लायक तो मैं ही हूं, अहम एव विद्यो, केवल मैं ही एव वैद्य हूं, मैं केवल जानने लायक हूं। वेदवित, वेद को भी जानने वाला कौन है, कोई है दुनिया में, वेद को जानने वाला मैं ही हूं और कोई नहीं बोल सकता। कोई ठोक कर नहीं बोल सकता मैं सर्व ज्ञान वेदवित हूं, नहीं, केवल भगवान वेदवित है। और वेद को करने वाला भी वेदांत कृत, वेद शास्त्र को उसको करने वाला ही मैं ही हूं, इसलिए मैं ठोक कर बोल सकता कि मैं जानता हूं, मैं ही क्रिएट किया हूं उसको, वेदांत कृत विधि बचा अहम अपने ऊपर करके बोलते हैं। ये सबको बोल करके भगवान फिर अपने उत्कर्षता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि ये जो दो प्रकार के लोक में दो प्रकार के हम भूत देखते हैं, एक क्षर और अक्षर, एक नाशवान और अविनाशी। नाशवान से तो मैं परे हूं ही हूं, नाशवान तो है ही नहीं, लेकिन जो अविनाशी है उनमें भी मैं सबसे उत्तम हूं। आत्मा परमात्मा ब्रह्म से परे सबसे उत्तम। भगवान को तीन प्रकार के लोग तीन प्रकार से जानते हैं। भगवत तत्व को तत्वविद लोग कहते हैं कि ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान, ये तीन प्रकार से जानते हैं। तो भगवान बोलते हैं ये जो ब्रह्म ज्ञानी है, जोगी है, जो परमात्मा को जानते हैं, ये तो है मुझे जानते, लेकिन उनसे सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट में जो भगवत रूप हूं, भगवत विशेष हूं, वो उत्तम पुरुष है, सबसे उत्तम हूं, उनसे भी परे हूं। तो इसलिए क्षर से तो मैं परे हूं, उससे वो है ही नहीं, क्षर तो मैं है ही नहीं, क्षर से परे हूं, लेकिन अक्षर से मैं उत्तम हूं। जस्मात क्षराम अतीतो हम अक्षरात अपिच उत्तमा, अक्षर से मैं उत्तम हूं, बेस्ट हूं, जितने अक्षर पदार्थ है सबसे बेस्ट अक्षर में हूं, अविनाशी, अविनाशी में सर्वश्रेष्ठ भगवान में हूं। तो वो भगवान कौन है? ना हुई पुरुषोत्तम है। तो अभी आगे चलकर भगवान अपने पुरुषोत्तमत्व को व्याख्या करते हैं, बोलते हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूं, इस प्रकार मेरे जो पुरुषोत्तम तत्व, मेरे पुरुषोत्तमत्व को जो जान लेता है वही सर्वज्ञ है, वो वेदविद है, वो सर्वविद है। यहां भगवान जोर देकर कहते हैं यो माम एव असम्मूढ़ो, असम्मूढ़ो, गीता में भगवान एक जगह में असम्मूढ़ और कहते हैं दसवां अध्याय में, यो माम अजम अनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। बोलते हैं जो मुझे, जो माम अजम अनादिम इस प्रकार जानता है व्यक्ति, लोक महेश्वरम संपूर्ण लोक में महान ईश्वर, मुही अज हूं अनादि हूं, इस प्रकार जो जानता है वो कौन है? वो असम्मूढ़ है, वो मूर्ख नहीं है, वो सब जानने वाला। असम्मूढ़ समर्थ्येषु मतलब वही असम्मूढ़ है, सर्व पाप ही प्रमुच्यते, वह सारे पाप से बच जाएगा केवल भगवान को जानने से। और बाकी कोई दूसरे उपाय से, नाम विदुह सुरंगणा न प्रभवंती न महर्षया, कोई सुर असुर देवता ऋषि महर्षि कोई नहीं जान पाते मुझे, केवल शास्त्र पढ़ करके यज्ञ दाप दान तप धर्म व्रत आदि पालन करने से जाना नहीं जा सकता कुछ। और यहां तक के असम्मूढ़ पद में इसे कहते हैं यो माम एव असम्मूढ़ो, उसमें कहते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत प्रकार संसार में विभिन्न प्रकार के मतवाद है, विभिन्न प्रकार के मतवाद है, तो अलग अलग मत से जो विभ्रांत नहीं होता है वो असम्मूढ़ है, वो मोहित नहीं होता किसी मत के द्वारा, किसी और बात के द्वारा मोहित नहीं होता, वो असम्मोहित है, ठीक ठीक से जानता है। क्या ठीक ठीक से जानता है? यो माम जो मुझे जानता है और किसी के द्वारा किसी बात कोई मत की बात के द्वारा मोहित ना हो करके मुझे ही पुरुषोत्तम करके जो जानता है स सर्वविद, भगवान की सर्वश्रेष्ठता पुरुषोत्तमत्ता को जाने लेना ही वही सर्वज्ञता है, वही सर्वविद है। उसके अलावा यहां तक ये ध्वनित करके कहते हैं कि जो इस संसार में अनेक प्रकार के कला, अनेक प्रकार के भाषा, अनेक प्रकार के ज्ञान, अनेक प्रकार के विषय, अनेक प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति किया, उसमें अभिज्ञ बन गया, लेकिन भगवान को नहीं जान पाया तो अज्ञ है। समस्त प्रकार की क्रिया यज्ञ ताप व्रत ध्यान इत्यादि इत्यादि सब कर डाला, बहुत बहुत सर्व प्रकार से भक्ति के अंग भी जाजन किया, लेकिन भगवान को नहीं जाना तो वो अभक्त है, उसका सारे बेकार बेकार सब बेकार निष्फल, कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कि उनको जानना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो असम्मूढ़। असमूढ़ता होता है, नाना प्रकार के मतवाद से कोई अगर विवाद करेगा। कभी कोई आचार्य ऐसे बोलते हैं कि भगवान आप ऐसे बोलते हैं ठोक करके, कोई अलग अलग बाद के कई अलग अलग प्रकार लोग ऐसे बोलेंगे ऐसा नहीं, ऐसे कैसे होगा, ऐसे होगा, कोई बोलेंगे बोलेंगे करने दो अज्ञान लोग को इसे वाद विवाद करने दो। जो ऐसे वादी अज्ञ है आपस में जुक्ति तर्क कर तर्क से लिपट कर पड़े रहते हैं उनके बात में नहीं कहता हूं। तो इसे बोलते जो माम, जो उन सब अज्ञों से वेदवादी से तर्कवादी से लिपट करके निकल कर आ चुके हैं, उनसे छोड़कर बोलो जाने दो आप झगड़ा से पड़े कौन पड़े, उनसे निकल करके आ चुका है वो असमूण है। फिर वो कैसा असमूण है न मुझे जान गया, ये माम एव मुझे ही केवल असमूढ़ हो जान आती पुरुषोत्तम, जो मेरा पुरुष उत्तमत्तक जो जान लिया, इस तत्व को जो जान लिया वो सबसे विवाद से हट करके संपूर्ण सबसे हट करके मुझे जो केवल जान लिया, इसी से मैं कहता हूं कि एव केवल वही है। कौन है ना केवल भक्त है, बाकी कोई नहीं जानता। ऐसे भक्त जो मुझे उत्तम करके जान लिया, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कर्ष करके जान लिया पुरुषोत्तम को, वो सर्ववित है। भले है कुछ नहीं पढ़ा है, अक्षर तक नहीं पढ़ा है, कुछ कला कुछ ज्ञान कुछ शिक्षा कोई ध्यान कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल निरक्षर है, अंगुष्ठा छाप वाले हैं, लेकिन अगर नाना प्रकार के मत, नाना प्रकार के शास्त्र, नाना प्रकार के तर्क, नाना प्रकार से बच करके मुझे ही सर्व सब कुछ जान लिया जो, वो तो सर्वविद है, उसको मानना ही पड़ेगा। सभी को, सारे पंडित को बैठकर एक साथ में निर्णय लेना पड़ेगा, यही सबसे परे हैं। भले कुछ भी नहीं पढ़ा उन्होंने, कोई शास्त्र को देखा नहीं, छुआ तो कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे जान लिया, ऐसा कह करके भगवान मानो ऐसा कहते हैं। चाहे कोरा से कोरा अज्ञा मूर्ख व्यक्ति भी क्यों ना हो, बिल्कुल गवार अनपढ़ क्यों ना हो, कोई भाषा से अनभिज्ञ क्यों ना हो, कोई कला से अभिज्ञ अनभिज्ञ क्यों ना हो, किसी प्रकार के क्रिया व्यवहार से अनभिज्ञ क्यों ना हो, अगर मुझे सब कुछ जान करके मेरा सेवा मेरा भजन करता है, मेरा नाम उच्चारण करता है, वो सर्वविद है, सर्वोपरि है। उनके सामने किसी को तुलना नहीं किया जा सकता, उनके साथ अतुलनीय है, वो सर्वविद है। केवल सर्वविद नहीं, इस प्रकार जो सर्वविद होता है वो क्या करता है, वो क्या उसका लक्षण कार्य क्या होता है, न भजते माम सर्वविद सर्वभावेन भारत, वो तो हर प्रकार से हर भाव के द्वारा मेरा ही भजन करेगा। हर भाव साधारणतः हम भक्ति में चार भाव देखते हैं, अन्य अनेक भाव है, साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य दास्य आदि आदि, किसी भी भाव से मेरे से संपृक्त होकर के संबंध रख करके मेरा भजना ही केवल करेगा, बाकी विद्या अविद्या पाठ जोग तर्क से कोई मतलब नहीं है, ये सबसे हट जाएगा, चुप से अलग हो जाएगा। जाने दो तुम जो इतना कितने तर्क वाद विवाद इसे न्याय मीमांसा करते रहो, हम ये सबसे लिपटेंगे नहीं, हम तो चुप अलग होकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार एकमात्र मेरे नाम के शरण में, मेरे पुरुषोत्तम के शरण में मैं सब कुछ हूं, इसको जान करके मैं ही उनका हूं और वो मेरा है, मेरे से मेरा ही अंश है, मेरा ही केवल संबंध है, और इस प्रकार जो जान करके मान करके ही क्रिया करता है, बाकी कोई झंझट में नहीं पड़ता है, तो ही है सर्वविद, वही है सर्वश्रेष्ठ भक्त, और सर्वभावेन भारत है भारत, सब प्रकार से वही मेरा भजन करता है। वो इस प्रकार न जान करके जो हर भाव की तरह मेरा भजन करता है, बड़े दिखा करके आडंबर सहकार समय बहुत विविध वस्तु विभिन्न उपाय के द्वारा विभिन्न उपचार के द्वारा मेरा बहुत पूजा आदि बहुत प्रकार के भजन आदि करता है, बोलता है वो अज्ञ है या भक्त है, वो नहीं है, उनको पता नहीं तो फिर कैसे करेगा, वो नहीं। तो भगवान आपने सर्वोत्कर्षता और आपने को जो जान लिया भगवान को, भगवान के तरह केवल जो जान लिया वही सर्वोपरि है, वही हमारे है और हम उनके हैं और उनके लिए हैं, बाकी ये सारे संसार ये जगत ये शरीर मन आदि जो कुछ हमारे पास इंद्रिय आदि है वो ना हमारे है ना हमारे लिए है, वो केवल भगवान का है, भगवान के लिए ही है, उन उनके लिए उसको उपयोग करना है, उनकी प्रसन्नता के लिए उपयोग करना है। इस प्रकार जो जान करके सब कुछ से बच करके केवल उन्हीं के सेवा, उनके भजना में, उनके नाम आदि करने में, जो कुछ नहीं जिसके पास, कुछ धनहीन है, मानहीन है, घर आदि सब प्रकार से हीन है, भगवान बोलते कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं उसके पास, मैं उनको दिया हूं, बुद्धि दिया हूं, मन दिया हूं, इंद्रिय दिया हूं, ये तो मैं दे रखा हूं, तो वो जब मैं उनको दिया हूं उनके जन्म शरीर के साथ, उनको मुझे दे, उनसे कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ उनके पास नहीं, मेरे नाम तो उच्चारण करे, उच्चारण नहीं कर पाएगा, बोलने का भाषा बोलने का शक्ति नहीं दिया, बोले ठीक है जो बोलता है उसको बोले वो अच्छा काम करता है, अनुमोदन करे तभी भी श्रेष्ठ हो जाएगा वो, तभी मान ले, केवल मान्यता मात्र में, अनुमोदन मात्र में कि भगवान ही सर्वोत्कर्ष सर्वोपरि है, भगवान के भजना करना ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है, जो करता है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसी बात को जो मानता है, जो जानता है, जो मान लेता है, अनुमोदन करता है, वो भी सर्वविद सर्वश्रेष्ठ है, वो भी भजन करता है। केवल हम ऐसे कहेंगे नहीं, भगवान तो हमको अभी दिए नहीं, अभी हम भक्ति करने तो आए हैं, लेकिन अभी मृदंग बजाना मुझे आता ही नहीं, अब मृदंग सीखना पड़ेगा मुझे, पहले 6 महीना टीचर करके सीख लूं, मृदंग सीख लिया, अब हारमोनियम सीखना पड़ेगा, करताल भी सीखा नहीं, मैं गा नहीं सकता हूं, गाना भी सीख जाऊं, अब लेक्चर देना मुझे नहीं आता है, वो भी थोड़ा सीख लूं, व्याकरण पढ़ करके संस्कृत फिर भागवत आदि टीका पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के ना जाएंगे, मन और तो ये सब कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जो मैं तुझे दिया हूं कुछ तो दे रखा हूं, तू मेरा है ना, इसलिए भगवान तो माम एव अंश, तू मेरा अंश है, मेरा अंश कहते मेरा अपन तो कुछ आपका अंदर है, तू उसी को जान लो, उसी को मुझे दो, उसी से सब कुछ हो जाएगा। रामायण में एक ऐसे कथा आता है, सभी जानते हैं आपने, जब भगवान राम ने वो सेतुबंध निर्माण कर रहे थे, तभी उनके सभी अनुगत मृत्य बानर आदि सब बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर ला करके समुद्र में राम नाम लेकर डालते थे, सेतु निर्माण में लगे हुए थे, तो एक छोटे सा गिलेरी था, कितना शक्ति है उसका, गिलेरी जानते ना कितना बड़ा छोटा सा होता है, उन्होंने मन में सोचा कि मैं तो भगवान के अंश हूं, मैं भगवान के लिए हूं, भगवान के काम करने के लिए, तो क्यों नहीं मैं भगवान के कर्म में लग जाऊं, काम में करूं, अरे भगवान का भी प्रोजेक्ट है डैम बनाना, तो इस प्रोजेक्ट में क्या काम कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन बोला नहीं मैं तो करूंगा, प्रभु का कार्य समय के नहीं करूंगा, मैं प्रभु का ही हूं। ये मन में सोच विचार करके उन्होंने गया, और जाकर के वो कौन से एक आधा किलो का पत्थर तो उठा नहीं सकता कि डाल नहीं सकता समुद्र में, लेकिन फिर भी भगवान ने जो उनको सामर्थ्यता, जो शक्ति, जो शरीर दिए हैं, उसी के द्वारा वो कर ही क्या सकता है, उन्हें जाकर के समुद्र के पानी में डुबकी लगा दिया, और डुबकी लगा करके गिला होकर ऊपर आया और रेत में लेट गया, तो गिला शरीर में कुछ रेत कण लग गया, बालू लग गया, और जाकर के समुद्र में उस शरीर को झाड़ा तो कुछ रेत कण वो पानी में गिरा, तो फिर डुबकी लगाया, फिर ऊपर आट करके फिर रेत में लेटा, फिर कुछ रेत कण लगा शरीर में और जाकर के समुद्र में झड़ा। आप सोचिए, आप लोग सुधी जन है, सोच करके बताइए, अगर एक करोड़ों 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 वर्ष भी ऐसा करते चले, क्या कोई 1-2 मीटर डैम समुद्र बंध जाएगा, संभव है नहीं, क्या हो सकता है संभावना, वही मर जाएगा, सन्निपात हो जाएगा, पानी में डुबकी लगाता लगा, कितनी बार डुबकी लगाएगा, मर ही जाएगा, बीमार होकर मर जाएगा, लेकिन वो कर रहा था, वो कर रहा था। यहां करके बड़े बड़े हनुमान आदि जो बानर है, बड़िष्ठ बानर, वो जा रहे थे, उनने देखे ये कि चुंच चुंच करके क्या जा रहा है, किसका पैर के नीचे आ जाए तो चटनी बन जाए, तो उसको साइड किए। भगवान ने अपने आसन से उठ करके आगे रोके, बोले ऐसा क्यों किया आपने, उसको अवहेलना क्यों किया आपने, ना प्रभु ये क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है मरना जाए कुछ हो, ऐसे हो जाए ना, अरे वो मेरा सतु में कार्यों में भाग ले रहा है, वो भी काम कर रहा है, प्रभु वो क्या काम करेगा ना, क्यों उनको मैंने जितना शक्ति दिया है वो इतना काम कर रहा है, आपको जितना आप इतना कर रहा है, आपको मैं शक्ति इतना नहीं दिया, सामर्थ्यता नहीं दिया, आप थोड़ी कर पाते, ये मत सोचो कि आप कर रहे हैं करके, मैं आपको जो पावर जो सामर्थ्यता दिया हूं आपने आप कर रहे हैं, उनको जितना दे वो कर रहे, कम से कम इतने तो अपने ओर से राजी होकर कर तो रहा है, लेकिन ये नहीं मान रहा है कि नहीं मेरे से तो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा तो मन में विचार नहीं लाया ना, मैं पहले कसरत करके प्रोटीन खाकर विटामिन खाकर शक्ति प्राप्त करूंगा, आधा किलो पत्थर उठाऊंगा तब जाकर के, ऐसा कुछ नहीं सोचा, सीधा सीधा स्ट्रेट आया और किया। भले अति नगण्य से नगण्य है लेकिन भगवान के द्वारा स्वीकृत हुआ हो, भगवान के आशीर्वाद का पात्र बना। तो इसी प्रकार हमारे पास कुछ भी नहीं है, नित्यांत नगण्य असमर्थ है, अयोग्य है, लेकिन फिर भी भगवान का ही है हम, भगवान हमारा है। इसी बात को जानकर, इसी बात को मान करके भगवान के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करो, भगवान स्वीकार करते हैं उसको। वही भगवान देखते हैं, भगवान कोई वस्तुग्राही नहीं है, भगवान भावग्राही है, अपने भाव को ही ग्रहण करते हैं। बाहरी वस्तु से क्रिया समझो क्या लेन देन, क्या मतलब है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, अरे जिसमें सेवा करने के लिए सहस्र सहस्र भाग्य की देवी लक्ष्मी लाइन लाकर खड़े रहते हैं, चांस नहीं मिलता। हम कौन से गली के कुत्ता है कि उनका सेवा कर सकते हैं, कौन सा सामर्थ्यता है हमारे पास, नहीं कर सकते हैं। लेकिन केवल सेवा करने का अभिलाष, सेवा करने का इच्छा जो भावना मात्र हमारे पास नहीं है, बाकी सब कुछ है। ये भावना मात्र जागृत करना है, भगवान इसी को ही चाहते हैं, इसी को ही चाहते हैं। तो इस परम शोभन काल पुरुषोत्तम मास में वृंदावन जैसे धाम में रह करके अगर हम इस भक्ति अभिलाष, भगवान की सेवा अभिलाष को, इस भाव को हम प्रकट कर ले, प्राप्त कर ले, वही सबसे उत्कर्ष होगा, सबसे श्रेष्ठ होगा, ऐसा कहना है। फिर उसने चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में ऐसा कहते हैं, प्रभु बोले सर्व काले सत्य कृष्ण नाम सर्वशास्त्र कृष्ण नावलयान हर्ता कर्ता पड़ता कृष्ण से ईश्वर अज भव आदि सव कृष्ण र किंकर। महाप्रभु स्वयं बोलते हैं कि सर्व काल में सर्व स्थान में सर्वदा केवल सत्य वस्तु कृष्ण के नाम है, सर्वशास्त्र कृष्ण ही नावलयान, सकल शास्त्र में वैदिक वांग्मय में कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं बताया गया कृष्ण नाम के अलावा। हर्ता कर्ता पालयिता कृष्ण ही ईश्वर, वही सब कुछ है। और अज मतलब ब्रह्मा, भ मतलब शिव, आदि आदि सभी देवता सब कृष्ण का किंकर है, उनके सर्वांत है। कृष्ण र चरण छाड़ी जे आर बाखाने, जो कृष्ण के शरणागति की छोड़कर के कृष्ण चरण छोड़कर और कुछ व्याख्या करते हैं, वृथा जन्म जाए तारा असत्य वचने, उनका जन्म वृथा हो गया, उनका वचन वृथा हो गया, सब उनका बेकार हो जाएगा। वृथा जन्म जाए तारा असत्य वचने, ये वचन सब असत्य है, बाकी जो कुछ प्रूव कर दे कुछ भी बोले सब असत्य है, सत्य तो केवल कृष्ण नाम है। आगम वेदांत आदि जत दर्शन सर्वशास्त्र कहे कृष्ण पदे भक्ति धन, आगम वेदांत आदि जितने दर्शन शास्त्र है सर्वशास्त्र में कृष्ण के चरण में भक्ति यही धन केवल बताया गया। मुग्ध सब अध्यापक कृष्ण रमायाया, बोलते जितने अध्यापक अध्यापना करते हैं सब मुग्ध सब मोहित है, छाड़िया कृष्ण र भक्ति अन्य पथे जाय, जो इस प्रकार मोहित है सम्मोहित, इस प्रकार अध्यापक कृष्ण को छोड़कर के दूसरे दूसरे बात कहते हैं। करुणा सागर कृष्ण जगत जीवन सेवक वत्सल नंद गोपेर नंदन, भगवान कृष्ण करुणा सागर है, सारे जगत का जीवन है, सेवक वत्सल है, जो उनका सेवा करता है, सेवा का भाव रखता है, सेवा का इच्छा रखता है, उन्हीं के वत्सल है। वो कौन है? ना नंद गोप के नंदन है, नंद नंदन है। हेना कृष्ण नामे जारा नाही रति मति पड़ी आया सर्वशास्त्र अतहर दुर्गति, और इस प्रकार कृष्ण नाम में जिसका रति मति नहीं हुआ वो समग्र शास्त्र पढ़ करके सारे वेद को पढ़ करके दुर्गति ही प्राप्त करेगा और कुछ नहीं होगा, तहर दुर्गति। दरिद्र अधम जदि लय कृष्ण नाम सर्वदोष थकिले जाय कृष्ण धाम, बोलते हैं कोई दरिद्र अधम क्यों ना हो यदि कृष्ण नाम लेता है, लय कृष्ण नाम सर्व दोष था कि सारे दोष दोषी होने पर भी वो कृष्ण के धाम को प्राप्त करेगा। यही मत सकल शास्त्र अभिप्राय ইহাতে সন্দেহ যারা সেই দুঃখ পায়। সকল শাস্ত্রের এই অভিপ্রায় হে, সারে প্রকার শাস্ত্রের অভিপ্রায় লক্ষ্য এই অভিমুখ্য, ওর ইসমে জিসকা সন্দেহ হে ওই অসম্মূঢ় হে, না ওই সম্মূঢ় হে, সম্মূঢ় ওই সম্মূঢ় হে। ইহাতে সন্দেহ যারা সেই দুঃখ পায়, ওই দুঃখী হোগা। কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি, কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে, সে অধম কহু শাস্ত্র মর্ম নাহি জানে। ওর কৃষ্ণ কে ভজন কু ছোড় করকে যে অলগ অলগ প্রকার সে শাস্ত্র কে ব্যাখ্যান করতা হে, ও অধম কহু শাস্ত্র কে মর্ম নহি সমজ, কবি শাস্ত্র কে মর্ম কু নহি জানতা হে, সমজ নহি সকতা হে। শাস্ত্র র না জানে মর্ম অধ্যাপনা করে, গর্ধে বের প্রায়োজন শাস্ত্র না বহি ভরে মরে। বলতে হ্যাঁ কি জিস প্রকার কোই শাস্ত্র পড়াতা হলে শাস্ত্র কা মর্ম কো নহি জানতে, উস পারপট কো নহি জানতা হে, ও কেসা হে উনকা তুলনা দেতে হ্যায়, জেসে গধা হে বহুত সারে পোথি কো লোড করকে পিঠি মে চলতা হে, লেকিন পোথি মে ক্যা হে কুছ নহি জানতা হে, কেবল লোড বহু হোকর মর জাতা হে। বলতে গর্ধে বের প্রায়োজন শাস্ত্র বহি মরে, শাস্ত্র কো বহন করকে মরতা হে। পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছাড়ে খারে, কৃষ্ণ মহা কৃষ্ণ মহোৎসব বঞ্চিলা তাহারে, কৃষ্ণ মহা মহোৎসব বঞ্চিলা তাহারে। যো সব কুছ পড় শুন করকে কৃষ্ণ কো নহি সমজ পায়া, সমঝো কৃষ্ণ উনকো ছল কর দিয়ে, বঞ্চন বঞ্চিত কর দিয়ে। তো এসে কহতে হ্যায় কি যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্র তস্য করোতি কিম, জিসকা আপনা প্রজ্ঞা শক্তি নেই হে জাননে কা, ইতনি বাত কো সমঝনে কা, মর্ম সমঝনে কা, জাননে কা, সমঝনে কা শক্তি নেই হে, উনকো সারে শাস্ত্র উনকে পাশ মে লেকর গ্যালারি লাইব্রেরি ভর দো, ক্যা কর সকতা হে, ক্যা সহায়তা কর সকতা হে উসকা, না কেসে, না দর্পণানাং ভিন্নস্য না লোচনানাং ভিন্নস্য দর্পণং কিং করিষ্যতি। জিনকা দো আঁখি নেই অন্ধা হে, উনকো ফার্স্ট ক্লাস 5000 রুপিয়া কে বেলজিয়াম গ্লাস লাকে দে দো, ইয়ে ভেট গিফট দে রহা হুঁ আপ লিজিয়ে, ক্যা কাম কেগা উসকা, ক্যা হেল্প কর সকতে উসকা, আঁখি নেই উসকা, তো ইতনে বড়িয়া মিরর উসকা ক্যা কাম মে আয়ে। ঠিক ইসি প্রকার জিসকা প্রজ্ঞা নহি হে, উসকো সারে শাস্ত্র ভি নিচোড় দো, ও ক্যা সমঝে, ক্যা হেল্প কর সকতা উসকা। ঠিক ইসি প্রকার ওই প্রজ্ঞা হে, ও ইয়ে কৃষ্ণ কো সমঝনা, কৃষ্ণ ভক্তি কো সমঝনা। ওহি পুরুষোত্তম হে, ওহি পুরুষোত্তম হে বামন কে অংশ হে, ওই পুরুষোত্তম মে পুরুষোত্তম কি ভক্তি উনকে সেবা করনা হি সর্বোৎকর্ষ হে, ইসি কো জান করকে মান করকে করনা হি সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য হে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।